एहेस्केल अध्याय 8। ये अध्याय उसकी पहली भविष्यवाणी का समापन है। एहेस्केल अध्याय 8 पद 1। फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के पांचवें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। एहेस्केल अपने घर में बैठा था और उसके साथ कुछ प्राचीन थे कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आ गया। एहेस्केल अध्याय 8 पद 2। और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, पीतल की सी झलक अर्थात आग। यूनानी बाइबल सेप्टजुइंट में इसका अनुवाद है मनुष्य की झलक सी। मेरे विचार में संदर्भ के अनुसार ये अधिक उचित अनुवाद है। एहेस्केल अध्याय 8 पद 2 से लेकर 4 तक। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ से कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजाता है। फिर वहां इसराइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसे मैंने मैदान में देखा था। इस दर्शन में भी वही करूब है जिसने उसे अध्याय 1 में दर्शन दिया था। एहेस्केल प्राचीनों के साथ बैठा था और अचानक उसने अग्नि का या किसी पुरुष का सा रूप देखा जो कमर से ऊपर आग तथा कमर से नीचे झलकाया हुआ पीतल का सा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे आकाश में उठाकर यरूशलेम लाया तथा उसे मंदिर के भीतर उत्तरी फाटक पर पहुंचा दिया। वहां उसने उस घृणित वस्तु को देखा जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का था। एहेस्केल अध्याय 8 पद 5 और 6। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वो डा उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसराइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। मेरे ही घर में, मेरे ही पवित्र स्थान में तू देखता है वे क्या कर रहे हैं। मैं इन बातों से बैर रखता हूं, परंतु ठहर, अभी मैं तुझे उनकी सबसे बड़ी बुराई दिखाता हूं। एहेस्केल अध्याय 8 पद 7 और 8। तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को फोड़। सो मैंने भीत को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। एहेस्केल अध्याय 8 पद 10। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इसराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। वो उस कमरे में गया तो वहां दीवार पर घृणित चित्र थे। एहेस्केल अध्याय 8 पद 11। और इसराइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र यजनया भी है, वह उन चित्रों के सामने खड़े हैं। शापान वही व्यक्ति है जिसने हिल्किय्याह द्वारा पाई गई व्यवस्था की पुस्तक को योशिय्याह के राज्यकाल में उसे पढ़कर सुनाया था और प्रजा को बोध हुआ कि वे परमेश्वर से दूर हो गए थे। इस कारण योशिया ने राष्ट्रीय पश्चाताप की घोषणा की थी। शापान धर्मी पुरुष था, परंतु उसका पुत्र महादुष्ट था। वो भी उनके साथ वहां उपस्थित था। वो अब वृद्ध हो गया था। एहेस्केल अध्याय 8 पद 11 और 12। और हरेक पुरुष अपने हाथ में धूप दान लिए हुए हैं और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इसराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोटरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। दीवार को ढा देने का अर्थ है उनके मन विचारों को समझना। परमेश्वर कहता है, देख उनकी कल्पनाएं कैसी कैसी है, उनकी मोह माया देख, उनके विचार देख, इसराइल के इन आत्मिक अगुओं के भ्रष्ट विचारों को देख। देखिए, परमेश्वर हमारे मनों में प्रवेश करके हमारे विचारों को और कल्पनाओं को देखता है। मेरे लिए ये एक नम्र होने का कारण है। बाइबल कहती है कि हमें प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह यीशु के अधीन करना है। वे कहते हैं, यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। ये उनका भ्रम था। परमेश्वर अब देखता भी है, परंतु वो त्यागता भी नहीं है। एहेस्केल अध्याय 8 पद 13 और 14। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे कहते हैं। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तामुस के लिए रो रही थी। तामुस बाबुल वासियों का पुनरुत्थान का देवता था। उसकी उपासना बसंत ऋतु में होती थी, जब पेड़ों में फूल आते थे। पतझड़ में जब पेड़ों से पत्ते गिरते थे, तब वे तामुस के लिए मातम मनाते थे, और बसंत ऋतु के आगमन पर वे तामुस के पुनरुत्थान का उत्सव मनाते थे और अंडे सजाकर बड़ी दावतें करते थे। अंडा अनंत जीवन का प्रतीक था। अंडों से चिड़िया पैदा होती है, अतः वे अंडों को रंगते और सजाते थे। कलीसिया ने भी इसी अभ्यास को यीशु के पुनरुत्थान में अपना लिया, और यूनानी देवी अस्तरत का नाम ईस्टर दे दिया। अस्तरत यूनानी देवता एदोनिस की पत्नी थी। एदोनिस तामुज का समानांतर देवता था। आज अनेक कलीसियाएं ईस्टर पर रंगे हुए अंडों की टोकरियां बच्चों को देती है। ये सब अस्तरत के उपासकों का अभ्यास है। आरंभिक कलीसिया में मसीह के पुनरुत्थान को याद करने का कोई निश्चित दिन नहीं था, परंतु जब अगुओं ने देखा कि अन्य जातियां अपने देवताओं के पुनरुत्थान का त्योहार मनाती है और विश्वासीगण अकेले रह जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस दिन मसीह यीशु का पुनरुत्थान मनाए और उन्हीं की प्रथाओं का पालन करें, जैसे अंडा रंगना आदि। परमेश्वर ने एहेस्केल से कहा, आ, मैं तुझे इससे भी घृणित काम दिखाऊं। इन स्त्रियों को देख जो तामुस के लिए रो रही है, ना कि उस विनाश के लिए जो इसी भयंकर पाप के कारण उन पर पड़ा है। पाप ने तो उनकी धार्मिकता का ही अंत कर दिया था। एहेस्केल अध्याय 8 पद 15 और 16। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वो मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा की भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। वहां उसने देखा कि 25 पुरुष यहोवा की ओर पीठ करके पूर्व दिशा की ओर सूर्य की पूजा कर रहे थे। मैं जब भी यरूशलेम जाता हूं तो वहां मस्जिद को देखता हूं जो ध्वंस मंदिर के केंद्र में बना हुआ है। वहां वे पूर्व की ओर मुंह करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर मुझे एहेस्केल का यही दर्शन याद आ जाता है कि इसराइल वासी महापवित्र स्थान को पीठ दिखाकर सूर्य की पूजा कर रहे थे। एहेस्केल अध्याय 8:17। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। ये अन्य जातियों की आराधना विधि का तरीका है। उनकी विधियां ऐसी गंदी है कि इनकी चर्चा करना लज्जा की सीमा से परे है। इस कारण परमेश्वर ने कहा, एहेस्केल अध्याय 8:18, इसलिए मैं भी जल जलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा।